सॉरी, रिमेनिंग जो इनडायरेक्ट इलाजा का है वो मैं बताता हूँ। इनडायरेक्ट इलाजा में ये होता है कि हमने एक एंटीजन ले लिया जो कि हमें पता है नॉन एंटीजन है, हमने एक बर्तन में फिक्स कर लिया ताकि वो हिले ना। उसके बाद मैंने पेशेंट से सीरम ले लिया, उसमें सस्पेक्टेड एंटीबॉडीज शायद हैं, वो हमने उसी बर्तन में डाल दिए। अब हो सकता है कि वो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में हाथ मिला लें, हो सकता है उन्होंने हाथ ही ना मिलाया हो, कुछ अलग कैटेगरी के हो, तो इसलिए हम इसको वॉश करेंगे। तो जो रुक जाएंगी, हाथ मिला लिया होगा और क्योंकि एंटीजन तो ऑलरेडी फिक्स है, तो जो रुक जाएंगी वो रुक गई वरना चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल वो स्पेसिफिक है तो वो रुक गई, ठीक है। अब हमने एक और एंटीबॉडी जो उसको हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड, वो वाली एंटीबॉडी वो हमने डाल दिए। वो एंटीबॉडी क्या करेगी कि वो एंटीजन के साथ अटैच नहीं होगी, वो इसी प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अटैच होंगी, इसलिए ये वाली जो इनडायरेक्ट में है ये वाली एंटीबॉडी हम इसको सेकेंडरी एंटीबॉडी भी कह सकते हैं। अच्छा, ये इसी एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाएंगी। अब हम दोबारा वॉश करेंगे, क्योंकि अटैच नहीं है तो चला जाए। अब हम क्या करेंगे कि वही कलरलेस सबस्ट्रेट जो एंजाइम के लिए है, किस एंजाइम के लिए, जो सेकेंडरी एंटीबॉडी पर था, वो उस सोल्यूशन में डाल दिया। तो अगर रिएक्शन हो गया और कलर चेंज हो गया, नेकेड आई से नजर आ गया, तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी एंटीबॉडी मौजूद है। सेकेंडरी एंटीबॉडी क्यों मौजूद है, इसलिए कि प्राइमरी एंटीबॉडी मौजूद है। प्राइमरी एंटीबॉडी क्यों मौजूद है, क्योंकि एंटीजन मौजूद था। तो ये सारा एक सीक्वेंस हमें पता चल गया और हमें कलर चेंजेस से चीज़ें पता चल गई। अच्छा, इसके अलावा हमें जो इम्पोर्टेंट वो था वो ये था कि डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसिस और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसिस में डिफरेंसेस क्या है, वाइवा का क्वेश्चन भी है। तो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसिस में जो अच्छी चीज़ें हैं वो क्या है, बुरी चीज़ें क्या हैं, इसमें यह है कि थोड़ा टाइम कम लगता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा ये कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं आसान है। जो तीसरी अच्छी चीज़ है वो ये कि क्रॉस रिएक्टिविटी इसमें नहीं है, क्रॉस मतलब स्पेसिफिक एंटीजन वो है, क्रॉस रिएक्टिविटी इसमें कम होती है। कि जो बुरी चीज़ें हैं वो ये है कि इस पर तो खर्चा ज़्यादा आता है, एक्सपेंसिव बहुत है, और इसकी जो है ना अवेलेबिलिटी जो है ना वो बहुत मुश्किल से मिलती है। प्रोसीजर जो प्रोसीजर है हर जगह होता नहीं है। तो ये और तीसरी जो ख़राब चीज़ है वो ये कि इसकी सेंसिटिविटी कम है। सेंसिटिविटी क्यों कम है, वो इसलिए कि एक एंटीजन एंटीबॉडी मिलते हैं और वो एक कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और वो आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसिस में, अच्छा ये सारी चीज़ें जो है अपोजिट है इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसिस में, ये अपोजिट है। उसमें जो है ना सेंसिटिविटी ज़्यादा है, वो बहुत अच्छी चीज़ इसलिए है कि उसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसिस में क्या होता है कि एक ही प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बहुत सारे सेकेंडरी फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज अटैच होते हैं। तो जब बहुत सारे एंटीबॉडीज अटैच होती हैं और सारे फ्लोरोसेंट होगी, तो उसका कलर ज़्यादा इमिट करे ज़्यादा कलर इमिट करेगा और ज़्यादा वाजह नज़र आएगा। तो इसलिए वो ज़्यादा क्लियरली जो है डिजीज के बारे में बताता है। तो इसलिए जो इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसिस है उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, और ये अच्छी बात है। बाकी सारी चीज़ें जो है ना सारी इसके अपोजिट हैं वैसे। अच्छा, इसके अलावा हमें थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि जब हम स्नेप फ्रीजिंग क्या होता है, माइकल्स मीडियम, नॉर्मोसिलेन और फॉर्मलिन, ये सारे हमें ऑलरेडी पता है। स्नेप फ्रीजिंग का मैकेनिज्म ये है कि जब बायोप्सी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने नॉर्मल सेलाइन में ले लिया, तो हम उसको नाइट्रोजन में जो है ना नाइट्रोजन का जो लिक्विड नाइट्रोजन उसमें डाल लेते हैं 30 सेकंड्स के लिए, और ताकि वो बर्फ़ बन जाए। उसके बाद हम उस टेस्ट ट्यूब को जो है जिसमें नॉर्मल सेलाइन था उसको निकाल के एक ड्राई आइस क्यूब में रख देते हैं। तो ये स्नेप फ्रीजिंग है लंबे टाइम के लिए उसको प्रिजर्व रखने के लिए। इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा चीज़ ये भी है कि जब इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसिस करते हैं, तो हम जब सीरम लेते हैं पेशेंट का, उसमें हमें एंटीबॉडीज मालूम करने हैं, तो हम सीरियली डाइल्यूटेड उसमें लेते हैं, 1:10, 1:32, इस तरह सीरियल डाइल्यूटेड, ताकि हमें पता चले कि इतने डाइल्यूशन में भी पॉजिटिव आ रहा है। अगर डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, फॉर एग्जाम्पल 1:1600, बहुत ही डाइल्यूट हो गया फिर भी आपको इम्यूनोफ्लोरोसिस नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एंटीबॉडीज बहुत ही ज़्यादा हैं, हमने इतना डाइल्यूट किया और फिर भी एंटीबॉडीज नज़र आ रही हैं, तो डाइल्यूशन का भी हमें आइडिया हो जाता है। और इसके अलावा डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस के लिए हम जो है आउटर रूट शीट ऑफ द एनेजन हेयर, हेयर का जो आउटर रूट शीट है वो भी एपिडर्मिस की तरह काम करता है, तो उसमें भी हम इम्यूनोफ्लोरोसेंस चेक कर सकते हैं। पेम्फिगस वल्गैरिस की बात हो रही है।